के वहां पहुंचने पर हमारे सुग्रीव ने सबसे प्रथम उनके दर्शन किए थे। सुग्रीव ने मुझे वहां से भेजा तो उसके बाद मैं उस पर्वत से नीचे उतर करके राम जी के पास पहुंचा था। दोनों के मेरे भरपूर दर्शन किए थे और मैं भी उनसे एक बार दर्शन करके भय से मोहित हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उन दोनों को सुग्रीव के पास ले जाकर वहां पर उनकी मित्रता करवाई। मैं अपने कंधे पर बैठा करके उस पर्वत के ऊपर ले गया था और महात्मा सुग्रीव के सामने मैंने ये निवेदन किया कि ये आपसे मित्रता चाहते हैं। तब सुग्रीव के सारे कष्ट को राम जी ने सुना और एक स्त्री के कारण से बाली ने सुग्रीव के साथ जो अत्याचार किया था वो सारा अत्याचार राम जी ने सुना और राम जी महाराज ने अपनी सारी बात सुग्रीव के सामने बताई थी। और हे सीता जी, उस समय में मैंने सुग्रीव जी को याद दिलाया कि हे महाराज, एक दिन वो स्त्री जा रही थी अपने पास में वो गहना कपड़ा है ना, तो सुग्रीव ने कहा हाँ हाँ लाओ 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 और रामाय आनी और राम जी के लिए लाकर मैंने उनके सामने सब वो आभूषण रख दिए और आपका कपड़ा था वो भी राम जी के सामने रख दिया। देखो वहाँ आता है कि सुग्रीव गए थे, यहाँ हनुमान जी कहते हैं कि हम गए थे, हम जाकर के लेके आए थे। यहाँ क्या है, सीता जी के मन में विश्वास दिलाने के लिए कि भाई जो है रावण नहीं हूँ ये बताने के लिए। तानि सर्वाणि रामाय आनी हरि कृपा, जब राम जी के सामने उन सबको रखा और मैं ऊपर हितानि से मैंने लाकर रखा, तो उस समय में राम जी महाराज ने उनको देख देख करके बड़ा विलाप किया, एक एक आभूषण को देखने लगे। स्वर्णवन अवकीर्णानि तस्मिन् विहित चेतसि, तान्यंके दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा। मुझे वो दिन याद है कि जिस समय में रावण आपको ले जा रहा था और आपने वो आभूषण ऊपर से डाले थे, ये आभूषण सब अलग अलग गिरे थे, तो हमारे मंदिरों में मैं ही उठ करके एक एक आभूषण को मैं चुनने लगा था। आपका कपड़ा जिस समय हवा में उड़ता आया उसको लपक करके मैंने ही पकड़ा था और आपके जो आभूषण थे उनको चुन चुन करके मैंने ही वहां डाला था। उस समय में बंदरों ने ही बात कही कि भाई हनुमान क्या करते हो, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, क्या करते हो। कोई बात नहीं, कभी कोई राम नाम का आदमी आएगा उसको बोल दे ये बिचारी दुखनी यदि कुछ बात बोलती है तो इसकी सेवा हो जाएगी। मैंने सामान्यतया वो जो है आभूषण लेकर के रख दिए थे और वे आभूषण देखिए आपके पास में अभी भी कम है, ये भी मैं देख रहा हूँ। राम जी तो भाई उन आभूषणों को लेकर के बड़ा विलाप करने लगे और विलाप करते करते वो मूर्छित से हो गए। बहुत देर तक भी राम जी महाराज शायितम च चिरम तेन दुखार्थिन महात्मना, फिर वो जो है बड़ी मुश्किल से उनको सांत्वना दी गई। मैंने राम जी से बहुत सांत्वना देते हुए कहा हे राम, आप इतने बड़े सम्राट के इतने बड़े पुत्र होकर आप अज्ञात दुख के लिए, माने जिस दुख की अभी कोई कल्पना नहीं है उस दुख को याद करके क्यों रोते हो। सीता जी की जहाँ तक खोज की बात है अपने सब मिलकर के खोजेंगे, ऐसा मैंने बार बार आश्वासन दिया, सुग्रीव जी ने भी आश्वासन दिया, परंतु क्या करें आपके वियोग में उनके तो बहुत तड़पण लगी हुई थी और उस आपके प्रेम की आग के अंदर विसदा उद्विग्न रहते थे, इसलिए उनको कभी नींद नहीं आती थी, केवल चिंताग्रस्त रहते थे, शोकग्रस्त रहते थे। और तब अदर्शन शोके ने तुम्हारे अदर्शन का जो शोक था उस शोक से राम जी चलते फिरते कभी गिर जाते थे, कभी बेहोश हो जाते थे। महता भूमि कंपे ने महादेव शिलोच्चय, कभी कभी राम जी गिरते थे ऐसा लगता था कोई पर्वत का शिखर भाग गिर गया। वे राम जी तुम्हारे लिए जंगल जंगल में गए, नदी नदी में गए, गुफा गुफा उन्होंने देखी, और वो जंगल में आराम से घूमते हैं, लेकिन भाई वो जंगल तुम्हारे बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छे अच्छे जंगलों में गए, नदियों के किनारे गए, खूब अच्छे अच्छे फलवान वृक्षों को देखे, लेकिन देखते ही आपकी याद आकर के वो रोने लग जाते हैं। वे मानव श्रेष्ठ श्री राम जल्दी आपके पास आएंगे और रावण के मित्र बांधवों को मार करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि राम और सुग्रीव की जब मित्रता हो गई, तब राम जी महाराज बाली को खोजने, बाली को मारने के लिए निकले थे, और फिर राम जी ने उस बाली को मार दिया। मारने के बाद किष्किंधा का राज्य था, वो किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया, और फिर उसके बाद सुग्रीव की और राम की और प्रगाढ़ मित्रता हो गई। मेरा नाम हनुमान है, उन बंदरों के साथ का एक बंदर मैं भी हूँ, और मुझे देखो, यहाँ पर आपको आपके खोज के लिए भेजा है। मेरे जैसे करोड़ों बानर दसों दिशाओं में इसी प्रकार से भटक रहे हैं, और हम लोग भी चलते चलते अंगद के सेनापति में, मतलब सेनापतित्व में, अंगद की अध्यक्षता में दक्षिण दिशा में आए थे। हम भी बहुत घूमे, विंध्याचल के पर्वत पर्वत पर घूमे, और कई बिलों में भी घूमे, कभी किधर कभी किधर। हम सब घूम घाम करके जब समुद्र के किनारे आए, हम सब ने विचार कर लिया कि अब प्राण त्याग देना है, लेकिन सीता नहीं मिल रही है, और इधर जो है सुग्रीव की दी हुई अवधि भी पूरी हो गई है। तब हम सब ने मरने का निश्चय किया। तब उस समय में हम लोग प्रायोपवेश के लिए बैठ गए थे। अंगद ने हम सबको कारण भी बता दिया था कि अब अपने जीने में कोई सार नहीं है, और तब नाशन चवैने ही परिनश्च तथा वधम। और उन्होंने ये भी कह दिया अंगद जी ने कि भाई सीता जी मिली नहीं है, और मेरे बाप बाली का वध हो गया है, अतएव सुग्रीव के पास जाने पर मुझे दंड मिलेगा। अपने सब लोग यही अनशन के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दो, ऐसा हम लोगों ने विचार किया। और हम बोलते बोलते थोड़ी सी इतनी बात बोल दिए, ये जटायु बड़े भाग्यवान थे जिन्होंने रावण से युद्ध करते करते अपना प्राण का त्याग कर दिया। ये जटायु का नाम सुनते ही वहाँ पर संपाति नाम के बानर बैठे, संपाति नाम के गीधराज बैठे हुए थे। वे गीधराज गुफा में से आवाज करते कहने लगे, अरे मेरे भाई को किसने मार दिया, जरा उसका नाम तो बताओ। तब हमने उन्हें वो कहा कि ये सब रावण ने किया है, सीता का जिसने हरण किया उस रावण ने, सीता हरण का विरोध करने वाले जटायु का वध कर दिया, तलवार से वध कर दिया, पंखे कट गए, खून निकला, और अंत में वो मर गया। ये बात सुनते ही संपाति ने बड़ा क्रोध किया और कहा कि देखो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, एक ही सहायता कर सकता हूँ कि मैं यहाँ बैठे बैठे सीता कहाँ है उसकी खोज करके बता सकता हूँ। तो उन्होंने उस समय में जो है चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, और दृष्टि दौड़ा करके उन्होंने कहा कि देखो बांदरों, सागर के पार एक लंका है, लंका के अंदर रावण है, रावण के महल के अंदर मैं सीता को देख रहा हूँ, ऐसा हमको कहा। तब हमने अनशन का विचार छोड़ा, और फिर समुद्र का लंघन कैसे हो ऐसा हमने विचार किया। अब सुयोजन का ये सागर, इसका लंघन, इसका लांघना, ये सब राक्षसों के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन सीता जी फिर मैं आपकी कृपा से इसका लंघन करके रात्रि में आया। रात्रि में आकर मैं रावण के महल में गया, रावण के महल में जाकर मैंने सब कुछ देखा, वहाँ पर आप मिली नहीं, और यहाँ पर आपके दर्शन हुए। अभी भाषस्व माम देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, हे देवी इतनी बात मैंने बताई, अब इस बात के अनुसार आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं सुग्रीव का सचिव हूँ और मैं पवन का बेटा हूँ, इसलिए आपका कुशल क्षेम सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। और लक्ष्मण सदा ही अपने बड़े भाई की सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मण के पराक्रम को कोई नहीं जान सकता है। मैं एक अकेला यहाँ आया हूँ और इस दक्षिण दिशा में कई बानर वहाँ पर मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ओहो, यदि आपके दर्शन नहीं होते, यदि मैं खाली हाथ चला जाता तो न जाने कितने बानर मारे जाते हैं। अब मैं अपने संताप को दूर कर दिया हूँ। आपके पास आने से अब मेरा शोक दूर हो गया है। मेरा समुद्र का लांगना व्यर्थ नहीं गया। आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो सीता जी, आप ही राम जी के यहाँ आने पर पूर्ण विश्वास रखिए, वो आपको प्राप्त कर लेंगे, इस बात पर विश्वास रखो। ये रावण अकेला नहीं मरेगा, अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सबको लेकर के डूब करके मरेगा। रावण वो पत्थर है कि जिसके गले में बन जाता है उनको लेकर के वो डूबता ही है। ये अकेला नहीं, भाई बंधुओं सहित मरेगा। और हे सीता जी, एक माल्यवान नाम का उत्तम पर्वत है, उस उत्तम पर्वत पर मेरे पिता केसरी रहते हैं। वे केसरी माल्यवान पर्वत से गोकर्ण पर्वत की तरफ गए थे और वहाँ संब साधन नाम का एक राक्षस रहता था। वो ब्रो किसी से मरता नहीं था, बड़ा उद्दंड हो गया था। नदियों में जा तो नदियों के अंदर रहने वाले सब प्राणियों को खा जाए, जंगल के प्राणियों को खा जाए। बड़ा बलवान राक्षस था, उसके लिए सब बड़े दुखी थे उस राक्षस से। तो मेरे पिताजी एक बार वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने उस संभ साधन को मार दिया। मार देने से सारे त्रिलोकियों में शांति हो गई। ऐसे में केसरी का बेटा हूँ और वायु का भी मैं बेटा हूँ। देखो, केसरी का औरस पुत्र हूँ, वायु का मैं मानस पुत्र हूँ और अंजना मेरी माता का नाम है। अचिरा स्वामित्व देवी राघव नहिता ध्रुवम। तो ये सब बातें मैंने आपको ये बताई है कि आपको मेरे पर विश्वास हो जाना चाहिए। इस प्रकार से कई कारण दिए सीता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए। सीता के मन में विश्वास पैदा हो गया और उसके बाद सीता के कमल के समान नेत्रों से प्रेम के कारण से आंसू गिरने लगे। सीता के मुख कमल के ऊपर शोक दूर हो गया। बताया ना कि जैसे राहु मुक्त चंद्रमा होता है, ऐसे सीता जी के उन्होंने दर्शन किए और हनुमान को बड़े प्रेम से देख करके जो है विश्वास कर लिया। और उसके बाद हनुमान जी ने आगे कहा कि हे माता जी, मैंने मेरी सब बात कह दी है, अब किम करोमि कथम चेति रोजते प्रत्याम्यम। अब मैं लौटना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप मुझे बता दीजिए। हते सुरे संयति शब्द साधने कपि प्रवीरेण महर्षि प्रेरणा ततोऽस्मि वायु प्रभवो मैथिली प्रभावतस्तत् प्रतिमश्च वानरः। मैं ऐसे केसरी का बेटा हूँ जिन्होंने जिसने संब साधन को मारा है। अतएव आप मुझे बताइए अब मुझे आगे क्या कार्य करना है, मैं तो अब लौटना चाहता हूँ। हनुमान जी ने फिर कहा कि देखो माता, आप मुझे बार बार रावण मानते थे, मैं वानर हूँ, वानर का ही रूप धारण करता हूँ और भी रूप बना सकता हूँ, लेकिन अभी आपके सामने जो हूँ ये मेरा बानर का रूप भी अपने पास रखता हूँ। थोड़ी देर दूसरा रूप भी बना लिया, लेकिन रूप आपके सामने बानर का है, बानर का रूप ही मेरे पास है। और हे सीता जी, मेरे पास एक राम जी की दी हुई अंगूठी है और वो अंगूठी आपके विश्वास के लिए मुझे दी है। आप उस अंगूठी को देख करके तो विश्वास कर ही लोगे ना। ऐसा जब कहा अंगूठी उनकी कि हाँ, एक अंगुली की अंगूठी मैं आपको दे रहा हूँ। जानकी जी ने वो अंगूठी ली अंगूठी लेकर के बड़े गौर से देखा और देख करके उनको विश्वास हो गया। चारु तद वदनम तस्याः ताम शुक्लायते क्षणम बभूव हर्षोद्गम च राहु मुक्त इवो दुराट। तब सीता जी ने उसको लेकर के प्रशंसा करते हुए कहा कि हे हनुमान, तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो और तुमने एक अकेले ने राक्षस के महल में आकर उसके सिर के ऊपर तुमने पैर रख दिया, ये तुम्हारे ही बल की बात है हनुमान, दूसरा कौन कर सकता है। हनुमान, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है, तुमने सुयोजन सागर को पार करके एक बड़ा ही श्लाघ्य कार्य किया है। इस सागर को तुमने गोखुर के समान समझ करके लंका में प्रवेश किया है। मैं तुमको सामान्य बंदर नहीं मानती हूँ। हे बानर, यस्य ते नास्ति संत्रासु रावणादपि संभ्रमः, तुम्हें तो रावण से भी कोई भय नहीं है, कोई त्रास नहीं है। हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे साथ बात करने के योग्य हो गए हो, क्योंकि तुम राम के दर्शन करके आए हो, तुम राम को जानते हो। देखो, यदि ये रावण मेरे हरण से पहले राम जी का दर्शन किया होता तो रावण मेरा हरण कभी नहीं करता, क्योंकि राम के दर्शनों में एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वो फिर पाप के अंदर चल नहीं सकता है। पराक्रमम अभिज्ञाय मत् सकाशं विशेषतः। और देखो, राम भी भाई किसी के पराक्रम को बिना देखे मेरे पास थोड़ी देख सकते थे, तुम्हारे अंदर उन्होंने पराक्रम देखा, तुम्हारा जो है मन देखा, तुम्हारी बुद्धि देखी, तब जो है उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। अच्छा बताओ, ये राम कुशल पूर्वक तो है ना, राम कभी क्रोध करेंगे कि नहीं करेंगे रावण पर? अरे वो जिस समय क्रोध करे तो सारी सृष्टि मिलकर के भी राम का अनिष्ट नहीं कर सकती। राम व्यथित तो नहीं है ना, राम को कोई संताप तो नहीं है ना, राम कोई भी काम करते हैं तो खूब सोच विचारने के बाद न करते हैं ना, राम कोई दीनहीन तो नहीं हुए है ना, राम किसी कार्य में मोहित तो नहीं हो जाते हैं ना, राम है वो अपने कर्णियों के कार्य को बराबर करते रहते हैं ना, द्विविधम त्रिविधोपायम उपायम अपि सेवते, एक राजा होने के नाते साम दाम दंड भेद इनका ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं ना, और कभी क्वचित मित्रेषु अपने मित्रों के साथ सौहार्द जैसा बर्ताव करते हैं ना, और मित्र लोग सदा उनको चाहते हैं ना, राम जी के बैरी लोगों में भी राम जी के प्रति श्रद्धा बनी हुई है ना, वो कल्याण चाहने वाले के परम मित्र श्री राम जी देवताओं के प्रसाद लगाते हैं ना, और वे राम जी पुरुषार्थ को और देव को दोनों को अलग अलग मानते हुए समय समय पर दोनों का उपयोग करते हैं ना, माने कोई तो कहते हैं कि भाग्य बड़ा, कोई कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, लेकिन राम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का उपयोग करते हैं ना। देखो, भाग्य की जगह भाग्य काम आता है, पुरुषार्थ की जगह काम आता है। लोगों ने हम लोगों ने क्या कि दोनों को एक जगह लगा दिया कि भाग्य बढ़ाएगी पुरुषार्थ बढ़ाए, नहीं भाई, भाग्य का क्षेत्र अलग है, पुरुषार्थ का क्षेत्र अलग है। देखो, पुरुषार्थ करना है परमात्मा की प्राप्ति में, और भाग्य की प्रबलता होती है संसार के वातावरण में। तो संसार के वातावरण में भाग्य को देखो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ को देखो, दोनों का अलग अलग क्षेत्र होने के कारण से कोई असमंजसता तो नहीं है ना, मेरे अंदर कोई स्नेह की कमी तो नहीं आई है ना, क्योंकि बहुत दूर रहने के बाद भी स्नेह कम हो जाया करता है, और मेरी विपत्ति को देख करके वे दया तो करते होंगे ना, मेरी विपत्ति से मेरा छुटकारा तो दिला देंगे ना। राम कोई कश्चिन माम मुझे इतने बड़े संकट को देख करके दया नहीं करते, उस बात तो नहीं है, राम मुझे जरूर प्राप्त करेंगे ना। राम है वो सुख के योग्य है और राम है वो दुख के लिए अयोग्य है, वे राम अब वे राम वर्तमान दुख को देखकर घबरा करके बैठे हुए तो नहीं है ना। वे राम कौशल्या का, सुमित्रा का, इन सब का आनंद करने वाले हैं ना। अभीक्षणम श्रुयते किंचित, क्या उन राम के पास में कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भरत, इन सब के समाचार आते रहते हैं ना। राम इनके समाचारों को जानते रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इन सब का समाचार जानना ही बंद कर दिया हो। क्या भरत जी को इस बात का मालूम हो गया क्या कि मेरा हरण हो गया है? क्या भरत बहुत बड़ी सेना लेकर के मंत्रियों के साथ में लंका में आकर रावण से युद्ध करने के लिए योजना बना रहा है? या वानर आदि पति सुग्रीव जल्दी ही यहाँ आकर रावण आदि को मार करके अपने मित्र का उपकार जो है करने ही वाले हैं? ऐसा लगता है क्या? क्या राम रुद्र रूप धारण करके इन रावण के सारे सेना का संहार कर देने में राम जी की रुचि तो दिखाई दे रही है ना? कचिन्न तद्देव समान वर्णन तस्या नम पद्म समान गंधी मया बिना शुद्धि शोक दीनम जलक्षये पद्म विवाद पेन। जैसे जलाशय के अंदर एक कोई पद्मिनी का फूल है, पद्मिनी है, वो गर्मी के अंदर झुलसा जाए और वो जिस प्रकार से जलक्षये, जलाशय जलक्षये, जल के नाश हो जाने पर जिस प्रकार से गर्मी के अंदर पद्म है वो मुरझा जाए, ऐसे क्या राम जी का चेहरा मुरझा तो नहीं गया है ना? राम जी सदा धर्म का ध्यान रखते हैं ना। धर्म के बहाने से उनको वन में भेजा गया, क्या राम जी कोई पश्चाताप तो नहीं करते हैं ना? क्या राम जी अपने माता पिता भाई बंधु आदि से विशेषता से मुझ में स्नेह करते हैं ना? ऐसे ऐसे सीता जी ने अनेक बातें हनुमान जी महाराज से पूछी और पूछ करके और वे सीता अब जो है और आगे बोलती है कि देखो हे हनुमान, मेरे जो वचन है इन वचनों में तुमको कहीं किसी प्रकार से कोई अनुचित मालूम तो नहीं दे रहा है ना? यदि मेरे वचन अनुचित नहीं है तो मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दे। तो इन प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि देखो नत्वाम यस्थाम जानते, हे सीता जी, राम जी को अभी इस बात का ज्ञान नहीं है कि आप यहाँ लंका में विराजमान हैं। अतः वो बिचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ भी करें तो जब तक रावण पर कब चढ़ाई करें, जब उनको मालूम चले तो वो मेरे वचनों को सुनेंगे, मैं जाकर उनको कहूंगा, तब वे यहाँ आएंगे और तब जाकर के आपका शोक दूर होगा। और विष्टम बहिता बाणो नहीं अक्षोभ्यम वरुणालयम, आप कहते हो कि समुद्र की बात, तो समुद्र को यदि राम जी महाराज अपने बाण से सूख लेंगे तो समुद्र सूख जाएगा, तो हम सारी सेना वहां पर उसके अंदर से पार होती होती आपके पास पहुंच जाएगी। आपके अदर्शन के कारण से राम जी को बड़ा दुख हो रहा है। जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक राम का दुख समाप्त होने वाला नहीं है। और मैं मंदराचल पर्वत की सौगंध खा के बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ के मैंने फल फूल खाए हैं। तो जहाँ से आदमी कुछ खाता है, पीता है, उपकार प्राप्त करता है, उसका तो कृतज्ञ होता ही है। तो मैं मंदराचल पर्वत की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं मलयाचल पर्वत की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं विंध्याचल पर्वत की, सुमेरु पर्वत की, दुर्धर पर्वत की सौगंध खा के कहता हूँ कि राम का मुख तुम जरूर देखोगी। चंद्रमा के समान खिलने वाला जो राम जी का मुख है वो तुम जरूर देखोगी, मुझे इसमें संदेह नहीं लगता है। और जो राम इस समय में प्रश्रवण पर्वत पर विराजमान है, जो राम इंद्र के समान प्रतीत होते हैं और जो पर्वत के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, वे राम न कभी मांस खाते हैं, वो राम न कभी जो है मधु खाते हैं, और वे वन्यम सुवीतम नित्यम भक्तम अश्नाति पंचमम, देखो वे पांचवें समय में जाकर खाते हैं। माने खाने के पांचवा समय आ जाता है खाते हैं, फिर चार समय निकल जाएगा, माने दो दिन में एक समय भोजन करते हैं। क्योंकि तुम्हारे शोक में उनको भूख नहीं लगती है, तुम्हारे शोक में उनको नींद नहीं आती है। राम के शरीर पर कोई मक्खी बैठ जाए, मच्छर बैठ जाए, कीड़ा बैठ जाए, सर्प बैठ जाए, बिच्छू बैठ जाए, तो भी वो इतने शोक मग्न रहते हैं कि उनको इन कीड़े मकोड़ों का, सांप का भी ज्ञान नहीं रहता। ऐसे भी राम हरदम शोक परायण रहते हैं और वे तुम्हारे अलावा दूसरी कोई बात सोचते भी नहीं है और अहर्निश तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं, सीते सीते इस प्रकार से विलाप करते रहते हैं। अनिद्रा सप्तम राम सुप्तोपि च मन नरोत्तम है, नींद नहीं आती है लेकिन सोए रहते हैं आंख बंद करके। आंख बंद करके सोने में थोड़ी थोड़ी देर में हे सीते हे सीते हे सीते इस प्रकार से वो मधुर वाणी में बोलते रहते हैं। कभी जंगल में बढ़िया फल देखते हैं, कभी वे फूल देखते हैं, कभी बहुत बढ़िया नदी देखते हैं। उस समय में श्वसन तुम्हारा तुम्हारा नाम लेकर सांस ले ले करके और तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अरे सीते तुम होती ये फल तुमको मैं खिलाता, कितना सुंदर स्थान यहाँ पर, तुम नदी के किनारे हमारे साथ रहती। ऐसे वो तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं क्योंकि उस विरह में जो वस्तु की सुंदरता है उस वस्तु की सुंदरता के साथ में आपको देखे बिना उनका वो वस्तु सौंदर्य उनके हृदय में नहीं बैठता है। सदैव नित्यं परितप्यमान स्वामेव सीते त्यभिभाषमाण धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतः प्रयत्नः। आपको पता नहीं है सीता जी वो आपके लिए कितना कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितने संताप को प्राप्त कर रहे हैं, कितनी बार आपका नाम लेते हैं। वे महात्मा अब अपने मन में निश्चय कर चुके हैं कि हमको सीता की प्राप्ति करनी ही है। सराम संकीर्तन बीत शोका, राम जी की कथा सुनी, राम जी के विषय में इतनी बातें सुनी तो भाई उसका शोक दूर हो गया और रामस्य शोके समान शोका। राम जी का जब शोक कम हो गया तो सबका ही शोक कम हो गया क्योंकि राम जी का शोक ही सबको शोकाविष्ट करता है। तो राम संकीर्तन भी शोका, अब तुमको राम जी के संकीर्तन के द्वारा माने राम जी की कथा सुनी इतनी बात सुनाई इससे तुमको अपना शोक कम करना चाहिए। शरद रखे नाम बुध शेष चंद्रा, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान अपने मुख को रख करके आप यहाँ आराम से रहिए। अब सीता जी बड़ी प्रसन्न होगी ये बात सुनकर के।
भगवान की असीम अनुकंपा है,
महापुरुषों की असीम छत्र छाया है। इस कलयुग में अपने लोगों को वाल्मीकि रामायण सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सीता जी हनुमान जी से कई प्रकार से बातचीत कर रही है। हनुमान जी महाराज ने सीता जी को अंगूठी प्रदान कर दी परंतु अभी भी सीता जी के मन के कई संताप वो दूर नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के विलाप को लेकर जो जो सीता जी को बोलते हैं त्यों त्यों सीता के मन में राम जी के प्रति अनुराग बढ़ता है। भगवान का अनुराग कब बढ़ता है? जब हमारे चित्त में भगवान से मिलने की तीव्र वेदना होती है। उस वेदना में भगवान का भाव विशेषता से बैठता है। हनुमान जी ने राम जी के विषय में सीता जी के मन में और ज्यादा वेदना जागृत की और अब आगे सीता जी हनुमान जी से पूछ रही हैं, कह भी रही है कि देखो हनुमान तुम्हारे इन विचारों में मुझे अमृत से भरा हुआ विष का समाचार मिल रहा है। विष तो इस बात से कि राम जी मेरे लिए तड़पते हैं, उनकी जो तड़फन है वो तड़फन जो है वो मुझे कष्ट देती है कि राम जी तड़पते हैं। और इसमें अमृत का भाव यह है कि राम जी के मन में मेरे प्रति अनुराग है, उनके अनुराग को जानकर मुझे अमृतमय सुख मिलता है और उनकी तड़फन को देखकर मेरे मन में पीड़ा होती है। राम अनन्य मना है और राम सुख परायण है, दोनों बातें राम जी में आपने बताई। देखो मनुष्य को ऐश्वर्य मिलता है, मनुष्य को दरिद्रता मिलती है, मनुष्य को बड़ी अनुकूलता मिलती है, मनुष्य को बड़ी प्रतिकूलता मिलती है। उससे एक मालूम है कि संसार में प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है, भाग्य बड़ी चीज है।